ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे हम सभी अपने आप से पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? क्योंकि पुरुषार्थ करके संपूर्ण तो हर एक को बनना ही है। तो अंत का समय तो समीप आ रहा है, लेकिन ये हर एक अपने अंदर देखे, चेक करे, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है। हमने अब तक जो भी बाबा से ज्ञान और योग की पालना ली है, उस पालना को रिटर्न देने का समय अभी आ गया है। क्या चाहता है बाबा हमारे से रिटर्न में उसके, कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं? क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की अथवा फरिश्ते बनेंगे हैं। तो जैसे जैसे अंत का समय समीप आ रहा है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो कि देखो अंत के समय में क्या होगा, दुनिया में हलचल बढ़ती जाएगी। तो एक तरफ हलचल, दूसरी तरफ हमारी स्थिति अचल और अडोल। उन हलचल की परिस्थितियों के प्रभाव से हम मुक्त रहें। कोई परिस्थिति हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करे। वो तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने सदा श्रेष्ठ स्वस्थिति में रहकर चलेंगे। और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहते हुए भी उनके प्रभाव से मुक्त रहकर हम एक अचल अडोल स्थिति बना सकें और दूसरों को भी उनके प्रभाव से मुक्त रख सकें, तो उसके लिए जरूरी है जो बाबा से ज्ञान और योग की पालना ली है, उसका प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम प्रयोग कर विजयी बन जाएं। तभी कहेंगे कि हमने बाबा के बनकर उसकी पालना का रिटर्न दिया। नहीं तो ज्ञान में तो बहुत चल रहे हैं, ज्ञान में चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसी स्थिति जिसके द्वारा हम नहीं बल्कि हमारे से दूसरों को बाबा की अनुभूति हो, तो उसके लिए क्या, किन बातों को ध्यान देकर चलें? सबसे पहली बात कि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। और भी कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम कहां कहां प्रयोग कर विजयी बन सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में योग का प्रयोग करें, वो भी हम बताएंगे, और कैसे करें उसकी विधि बताएंगे। तो सबसे पहली बात है, स्थिति हमारी श्रेष्ठ महान बन जाए उसके लिए अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। क्योंकि सबसे पहले हमारे मन में किसी बात के लिए संकल्प आता है, और वो संकल्प यदि पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका असर फिर हमारी स्थिति पर वैसा पड़ेगा, और व्यर्थ नेगेटिव साधारण है तो उसका असर फिर वैसा पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बनकर चले। तो बाबा ने तो कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हर एक हम अपने आप से साथ साथ ये भी पूछ लें, क्या जो मैं बनना करना चाहता हूं या चाहती हूं मैं वही सोचती हूं? या कई बार हम जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ संकल्प कर रहे हैं उस सभी का हमारे मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो कैसे एक संकल्प हमारी मन और स्थिति पर प्रभाव डालता है? बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात की ओर जाता है। एक भाई का फोन आया, कहने लगा, भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे साथ एक बड़ी समस्या आ गई मेरे सामने कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब बड़ी आयु में कहां जाएं, क्या करें, बड़ी समस्या आ गई। तो हमने पहली बार सुना ऐसा अनुभव, भाई कोई ज्ञानी आत्मा ज्ञानी के साथ ऐसा व्यवहार करे, चलो अज्ञानी करते एक अलग बात हो जाती है। तो मैं सोचने लगा इसको क्या जवाब दिया जाए, तो दो मिनट बाबा को याद किया और बाबा को कहा बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो उससे पूछा भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट में सोच कर कहता है कहा हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, इस पर हमें विशेष ध्यान देकर चलना होगा। जो हम इसलिए हम जो बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। तो विभिन्न परिस्थिति समस्याएं तो आएंगी हिसाब किताब चुक्त होने के लिए, लेकिन कैसी भी समस्या परिस्थिति आए कभी अपने मन में कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चले, तो आप जो सोचेंगे वही होगा। तो कैसे एक संकल्प जो हमारे मन में चल रहा है वो हमारे मन पर भी और शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, अगर उसको ध्यान देकर चलेंगे तो हम भी बहुत उसका फायदा होगा, कि बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है। जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, कैसा कौन सा संकल्प, हर एक अपने आप को देखना चेक करना, जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है इससे सिद्ध होता है आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो हर एक चेक कर ले अपने आप को, हमने लक्ष्य तो रखी है लक्ष्मी नारायण बनने का और संकल्प चल रहे हो इधर उधर के तेरी मेरी दुनिया भी, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसे ही संकल्प, वैसे ही विचार, वैसा ही चिंतन हमारे मन में चलना चाहिए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, सफल हो सकेंगे। तो सुनिए एक ऐसा अनुभव। एक भाई को डॉक्टरों ने, उसको कैंसर था, अंतिम स्टेज में पहुंच गया और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया, कहा आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। डॉक्टर की बात सुनकर उन्होंने एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त बनना है। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के बॉडी के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं, ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है, डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे बॉडी में सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है और भगवान के की सेवा करनी है और कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो उसके शरीर में कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए, खत्म होते गए। और आज इस बात को लगभग 12 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की अक्की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प के अंदर। तो भले चाहे कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों नहीं आए, लेकिन कभी अपने मन में हम कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, तो जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ हम योग के प्रयोग में है। पहली बात तो मैंने जो बताई संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल बनाएं, और हम अमृत, दूसरी बात अमृत वेले उठते ही आंख खुलते ही कोई न कोई एक सोमान इमर्ज कर ले, मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति में आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो और उसका स्वरूप बनकर उसमें स्थित होकर चले रहे हो उसका अभ्यास करें तो स्वमान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची वो स्वमान की सीट है। स्वमान से कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को खत्म किया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमान में। बाबा जब भी आते हैं, अव्यक्त बाबा दादा ज्यादातर मुरलियों में आप देखेंगे, जब मुरली स्टार्ट करते हैं तो बाबा हमको अपने श्रेष्ठ स्वमानों की स्मृति दिलाते हैं कि आज बाप दादा जिसने चमकते सितारे लाइट हाउस मास्टर हाउस मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं से मिलने आए हैं। आज से लगभग 10-12 साल पहले की मुरलियां आप देखो या उससे पहले की, कुछ एक में होता भी है कुछ एक में नहीं भी होता, लेकिन ज्यादातर मुरलियों में हमें अपने स्वमानों की याद दिलाते फिर बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी आत्माओं से मिलने आए हैं। तो हमने कानों से सुना, डायरी में नोट भी किया मुरली है, और लेकिन जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा तब तक उस बात का नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा ने तो कहा ऐसी ऐसी आत्माओं से बाबा मिलने आए, लेकिन हमने स्वीकार किया हम ऐसी महान आत्मा है मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, क्योंकि जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी। तो इसलिए भगवान जिस नजर से हमें देख रहा है हम अपने आप को वैसा समझकर चलें तो वैसे बनते चले जाएंगे। तो कैसे स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है, सुनिए एक अनुभव। एक भाई ने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना और रजिस्ट्री करा देंगे। दो भाई पैसे लेकर गया, बातचीत होगी, जब कागज वगैरह सब तैयार हो गए तो कहा ठीक है पैसे दे दो रजिस्ट्री करा देते। तो उसने पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, आपको ये प्लाट नहीं हम ये प्लाट देंगे, बराबर की साथ साथ दो प्लाट थे, नहीं बोल बात तो हुई थी एक नंबर की, नहीं बोल दो नंबर का देंगे, कोई मौके की जगह होगी, नहीं बोल वो नहीं मिलेगा, तो ठीक है बोल नहीं मिलेगा तो मेरे पैसे वापस कर दो तो कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए उसके पैसे वापस नहीं कर रहा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका एक फोन आया, भाई जी मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, मैं क्या करूं, योग नहीं लगता बाबा से, टेंशन हो गया है, संकल्प विकल्प चल रहे। तो हमने कहा आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तो ये भी संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ये संकल्प इनका जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा, और मैं इनका बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाहिर इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापिस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया, ताली बजानी है थोड़ा जोर से बजाइए, हाँ इसके 2 कारण हैं। क्यों मैंने कहा, एक तो कईयों को थोड़ा समय ऐसा है तो बैठे बैठे सुनते सुनते वाणी से परे चले जाते हैं, दूसरा जब ताली बजती है तो हमारे हाथ में शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो पॉइंट दबते हैं और पॉइंट दबने से एक्टिवनेस रहती है, अलर्टनेस बनी रहती है और कई बीमारियों का इलाज भी इससे सहज सोते ही होता चला जाता है। तो इसलिए जहां जरूरत लगे आपको तो जरूर बजाएं। तो इस प्रकार से एक स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा हम असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं, नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो अमृत वेले आंख खुलते ही ऐसा स्वमान इमर्ज कर लें जिसकी स्मृति आती न साचड़े शक्ति की अनुभूति हो, और उसका अभ्यास करते योग करेंगे तो वहां कोई समस्या परिस्थिति स्वतः ही बदलती चली जाएगी, आपके अनुकूल बनती चली जाएगी। परिस्थितियां क्यों हमारे पर प्रभाव डालती हैं, बातों का परिस्थितियों का असर क्यों आता है, क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। अगर असर आ रहा है तो इसका मतलब हम अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति की सीट पर सेट होकर नहीं चल रहे हैं, देह के भान में साधारण स्थिति है, इसलिए परिस्थितियां आप पर प्रभाव डाल रही हैं। तो आवश्यकता है सदा अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति की सीट पर स्थित होकर चलने की। क्या है श्रेष्ठ स्थिति? श्रेष्ठ स्थिति अर्थात कम से कम हमारा एक दिन का योग का चार्ट 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते। श्रेष्ठ स्व स्थिति अर्थात जब चाहे जहां चाहे जिस स्थिति में स्थित हो जाए, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। श्रेष्ठ स्थिति अर्थात कोई भी संकल्प, एक ही संकल्प में हम जितना चाहे उतना समय उसमें स्थित होकर रह सके। तो इस प्रकार से जहां श्रेष्ठ स्थिति है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, एक छोटा सा अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने गए तो वहां 2 दिन की भट्ठी थी, तीसरे दिन बहनजी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए गए। लगभग यही समय था, ओपनिंग हुआ। उसके बाद बहन जी ने बोला कभी आपको ने सबका क्लास कराना है। रोड पर टेंट लगाया हुआ था तो उसमें बैठ के हम क्लास करा रहे थे। अच्छा मौसम था, धीरे धीरे पता नहीं काले काले बादल आने लगे और मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया, तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे क्या होगा। तो मैंने क्लास बंद किया और सबको कहा कि अब कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा, अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूं। हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग किया है और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई, और उसके बाद 1 घंटा पूरा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ, तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो जहां स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाती हैं। इसलिए श्रेष्ठ स्व स्थिति में स्थित होकर चलना रहना बहुत बहुत जरूरी है। यदि आपने परिस्थितियों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखना है, एक अचल डोल स्थिति बनानी है, तो तीसरी बात कैसे हम योग का प्रयोग करें, उसके लिए व्यर्थ से मुक्त होना बहुत जरूरी है। सदा ही समर्थ संकल्पों का स्वरूप बन के चले, क्योंकि व्यर्थ में बहुत भाई बहनों का समय वेस्ट चला जाता है और स्थिति साधारण हो जाती है। हमें कईयों को पता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ की मीठी मीठी बातें ऐसी होती हैं, बात शुरू होती है ज्ञान योग के विचारों से, चलते चलते कहां के कहां चले जाते हैं, बहुत सारा समय ऐसे चला है, दुनिया भी धंधे दौरी की, इधर उधर की, तेरी मेरी बातों का। तो व्यर्थ के लिए बाबा के भावक हैं कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों के कमाल देखने को मिलेगी। ये बाबा के शब्द हैं। तो कैसे जहां व्यर्थ से मुक्त होकर चलते हैं, मना सदा ही मन को कोई न कोई ज्ञान का मनन चिंतन स्वमान का अभ्यास चेकिंग करना चार्ट रखना अटेंशन देना अभ्यास करके चलना, ये सब चीजें अपने आप को बिजी रखने के लिए व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। मैं हर बात के पीछे के अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको ऐसा मन में ये विचार नहीं आए कि हम ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, सहज और सरल हो जाएगा ऐसा करना बनना। तो एक भाई आए क्लास के बाद हमारे से यहां मिले, तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई जी मेरे को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मैं पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या प्रश्न मेरे से पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा आप गाइड करेंगे क्या करना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है या मैंने जो याद किया है वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, और सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के गया। तो पहुंचा जहां इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे उनका ध्यान सिपाही की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो बोले फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोले हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोले हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा, तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 4-5 मिनट का गीत है, गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर उसने थोड़ी देर के बाद बोला साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये है समर्थ संकल्पों की कमाल। इसीलिए कैसे भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दें। सदा ही समर्थ के विचारों का स्वरूप बन के चले तो आप जो सोचेंगे फिर वही होगा। और योग के प्रयोग के लिए हम अपने मन की भावनाओं को सदा ही शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चले। चाहे कैसी भी कोई आत्मा हमारे से व्यवहार करे, दुख दे विघन डाले डिसरिगार्ड करे, लेकिन कभी हमारे मन की भावनाएं चेंज नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मान लो एक व्यक्ति आपसे बहुत दुख देता है, तंग करता है, डिसरिगार्ड करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? क्या विचार है माताओं का, रहती है शुभ भावना या बदल जाती है? ज्यादातर लोगों को यही सुनने को मिलता है कि बदल जाती हैं, थोड़े लोग कहते हैं कि रहती हैं। तो देखो ये नियम है कि जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रख के चल रहे हैं, सूक्ष्म में उनके वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस आत्मा के मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, वैसी भावना उत्पन्न होंगी जैसे हमारे मन की भावना उसके प्रति हम रख के चल रहे हैं। तो मान लो हमारी भावनाएं नेगेटिव हो गई तो उसके पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी तो उसकी नेगेटिव भावनाएं हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघन रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार हमारे से करे लेकिन हमारे मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर चलनी है। क्यों? क्योंकि हम विश्व के आधार मूर्त आत्माएं हैं, हमें सारे विश्व की आत्माएं फॉलो कर रही हैं। हमारा जैसा पुरुषार्थ होगा, हमारी जैसी भावना होगी, वैसे ही दूसरों की होगी। हर चीज का प्रभाव हमारे सभी बातों का दूसरों पर पड़ रहा है। तो हमको बाबा ने टाइटल दिया है क्या, विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सब के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना रहे। ऐसा नहीं कि एक दो के प्रति नहीं बाकी सबके प्रति हो, है? तो जहां हमारे मन में निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती है तो उनमें इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि उस आधार से आप कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो शुभ भावना शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई मिले हमारे से और प्रश्न किया उन्होंने कि भाई जी मैं ज्ञान में चलता हूं लेकिन मेरी युगल ज्ञान में नहीं चलती और बहुत विरोध करती है कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते विघन डालते होंगे, या कई ऐसे भाई होंगे जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलते रुकावट डालते हैं। तो ऐसी आत्माओं की मनोवृत्तियों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए अनुभव। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मैं क्या करूं? तो उन्हें बताया कि यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज से दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो कंप्लीट अपने मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलो, चाहे वो आपसे कितना भी विरोध करे। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर जब कोई विरोध करता है डिसरिगार्ड करता है तो हमारी ज्यादातर लोगों की भावनाएं तो बदल ही जाती है। मैंने कहा वो कितना विरोध करे लेकिन आप कंप्लीट अपने मन में उसके प्रति शुभ भावना रख के चलनी है। दूसरा कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है वो मैं बता रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिस भी आत्मा को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसा करेंगे। यह है इसका विधि सिद्धांत तरीका। इसलिए यह प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर सूक्ष्म में इस प्रकार से उससे बातें करो मन ही मन कि तुम तो बहुत शुभ भावनाओं के रूप में, कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। ऐसे उससे 7 दिन अमृत पहले योग में इमर्ज कर सूक्ष्म में और बातें करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो यहां से गए, जाने के बाद और अपने घर जाकर अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से उन्होंने बातें की शुभ भावनाओं के रूप में कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 7 दिन प्रयोग करना था, 2 दिन प्रयोग किया, 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्टी थी। तो उसने सोचा कि आज योग की भट्टी है तो योग की भट्टी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा कि कुछ शुभ भावनाओं के प्रयोग का असर हुआ या नहीं। गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आपको हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इतनी बड़ी शक्ति। एक मेरा स्वयं का भी अनुभव, एक बार हम महाराष्ट्र में कहीं जा रहे थे भट्टी कराने, तो हमारे साथ वाले भाई ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अभी एक ही डिपार्टमेंट से एक साथ मधुबन से 2 भाई बाहर जाएं तो यहाँ की सेवा में थोड़ा कमी आती है। तो मैंने उसको कहा भाई हो सके तो आप मेरे आने के बाद जाओ। नहीं नहीं मेरे को अभी जाना है, कुछ भी करो, किसी को भी रखो। काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने ये कह के छोड़ दिया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। और फिर 2रे दिन अमृत वेले योग में उसको सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की। तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और देखो, मैंने कहा मेरे मन में आपके प्रति बहुत शुभ भावना है कि आप जरूर दिल्ली जाओ, अच्छी तरह घूम के आओ, लेकिन मेरे आने के बाद जाओ ताकि यहाँ बाबा की सेवा भी ठीक चलती रहे, दोनों का काम भी हो जाए। ऐसे मैंने 2 दिन उसको अमृत वेले इमर्ज कर सूक्ष्म में लाइट के रूप में, शुभ भावना के रूप में बातें की। 3रे दिन जब वो मिला तो उसे पूछा कि भाई आप दिल्ली तो जा रहे लेकिन आपकी वापसी आने की डेट कौन सी है? तो कहता है कि मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो जो कार्य मुख्य बोल से नहीं हो पाया वो शुभ भावना शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन ने कराया। और इसके साथ साथ योग के प्रयोगों के लिए हम बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चले। बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चले। बातें तो आएंगी, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, चुक्त होने के लिए तो आएगा ना सबके सामने। और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं हमारे पास ही फोन आते रहते हैं, कुछ दिन से बहुत लोगों के समस्याओं के ही फोन आ रहे हैं। भाई जी ये समस्या भी ये हो गया, क्या करें, ये है वो है, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पुराने पुराने लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि अब अंत का समय है तो अनेकों का सब हिसाब किताब सब यही चुप्त होना है। जो कभी ना देखा होगा ना सुना होगा ऐसी ऐसी बातें आएंगी। तो हम क्या होता है, कोई समस्या आई या किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उस समस्या को ही सामने रख लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, ये तो बड़ी समस्या आ गई। अरे भाई समस्या आई है तो हिसाब किताब चुप तो होने के लिए आई है। देखो कहीं मान लो बरसात का मौसम आता है तो बरसात हम सोचेंगे कि बरसात क्यों हो रही है, भाई मौसम में तो होगी ना बरसात, हम अपना इंतजाम कर लें, बात खत्म, रेनकोट छाता ले लें, सेफ रहेंगे। ऐसे ही समस्याएं तो आएंगी हिसाब किताब चुप तो होने के लिए, लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला है, बच्चे तुम्हें किसी बात के कारण में नहीं जाना है, क्यों समस्या आई इसके लिए नहीं सोचना है, हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। इसलिए हम कारण का निवारण कर चलें। बाबा ने हर बात की विधि तरीके हमें बताए निवारण के, उसको यूज कर प्रयोग करें, वहां खत्म हो जाएगी समस्या। लेकिन क्या होता है, जब समस्या आती है तो ज्यादातर देखने में अनुभव से सुनने को मिलता है कि हम अपने सिरे स्वमान की सीट से नीचे आ जाते हैं, साधारण स्थिति में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तो वो छोटी सी बातें बहुत बड़ी लगती है। और जहां स्थिति श्रेष्ठ है, स्वमान की सीट पर स्थित होकर हम चल रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी वहां सूली से कांटा हो जाएगी, कुछ है ही नहीं, जैसे कि आई और गई। तो क्या होता है, जब मान लो कोई किसी ने कुछ बोल दिया आपको, अरे ये माता जी तो है ऐसी, इन्होंने ये काम किया, ये भाई जी ने ये ऐसे ही करते हैं, बस भाई जी का वहां से ही उस बात को पकड़कर बैठ गए कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ऐसे वैसे क्या क्यों, और उसी बात का चिंतन करते करते एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर लेते हैं, फिर उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते, संकल्प विकल्प चलता है। लेकिन यदि स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर जब आप बैठे हुए तो वहां वो बात तो जैसे कि पाई पैसे की लगी, कुछ है ही नहीं है? क्योंकि बाबा से जो प्राप्ति हो रही है, आपको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, उसके आगे तो बात कुछ भी नहीं है, है? तो इसीलिए हम बातों को महत्व ना दें, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चले। तो जहां हम बातों को महत्व देते हैं तो कैसे स्थिति हलचल में आती है, और जहां बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलते हैं तो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक युगल थे, एक उनका बच्चा था, तीनों ही ज्ञान में चलते थे, बहुत ही अच्छे ज्ञानी योगी पुरुषार्थी, आत्मा घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। तो चलते चलते वो माता के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, तो घर में बहू होनी चाहिए। तीन ही थे उस परिवार में, तो लड़के को माता जी ने कहा बेटा आप शादी करो। लड़का बड़ा था तो लड़के ने कहा, मने कर दिया लड़के ने, क्योंकि तीनों ही ज्ञान में चलते थे, मने कर दिया। एक बार कहा, दो बार कहा, मने कर दिया, तो तीसरी बार माता जी कहती है कि यदि आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो जब ये बात माता जी ने दो तीन बार बोली तो फिर लड़के का भी संकल्प चलने लगा, भाई मेरे कारण माता जी आत्महत्या करे तो ये तो ठीक नहीं है, चलो माता जी इतनी सेवा की है, पालना की है, योग बनाए, बड़ा किया, तो माता जी की बात मान लेते। तो लड़के ने शादी कर ली। शादी कर ली तो जो घर में बहू आई वो बहुत ही तेज और तराट, बस उसी दिन से सास बहू का लड़ाई झगड़ा शुरू, रोजाना का लड़ाई झगड़ा होने लगा। माताजी बड़ी परेशान, जितना सुख शांति थी सब दुख शांति में बदल गई, टेंशन। तो लड़के को बोला बेटा आप इसको समझाओ बहू को। तो लड़का कहता है माताजी मेरे को तो बहू की जरूरत थी ही नहीं, बहू तो आपको चाहिए थी, अभी आप उसका सुख लो, क्योंकि उसी ने जबरदस्ती से कह के शादी कराई। तो माताजी बड़ी परेशान, तो क्या करे। तो क्लास के बाद आपस में मिलते हैं तो किसी को अपनी समस्या बताई माताजी ने, भाई मेरे सामने ऐसे ऐसी बड़ी समस्या आ गई, मैं क्या करूं। तो किसी ने हमारा नंबर दे दिया, योग के प्रयोग का क्लास सुना होगा तो नंबर दे दिया। तो फोन आया माता जी का, भाई जी मेरे सामने ऐसे ऐसी बड़ी समस्या आ गई, मैं क्या करूं। तो हमने जो बात माता जी को बताई वो हम सबके लिए आज लागू होती है। आज हम सबके सामने जो भी विघन परिस्थिति समस्याएं आ रही है, वास्तव में उसका कारण कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं है। मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे ही कर्मों का परिणाम है, मुझे ही चुकतू करना है। तो हमने माताजी को यही कहा, माताजी देखो जो आत्मा आपके घर में बहू बनकर आई है तो जरूर किसी न किसी जन्म में आपने उसको तंग किया होगा, दुख दिया होगा, तो बदला लेने के लिए आपके पास आई है, क्योंकि बिना कर्म के हिसाब किताब के तो कुछ होता नहीं है ना। तो अभी क्या करो कि देखो दो तरीके तो हिसाब किताब चुकतू करने के आप सबने सुने होंगे अब तक। सबसे सुंदर तरीका तो है योग बल जमा करो। साधारण योग से हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे, शक्तिशाली पावरफुल योग चाहिए, बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का। उससे भी कर्मों का विनाश होगा, उससे संस्कारों का परिवर्तन होगा और आपका योग पावरफुल बनेगा। और दूसरा कि पावरफुल योग बनाने के लिए तीन अभ्यास अभी से सब रोजाना करके चले। जिनको अपने योग को पावरफुल बनाना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, कम समय में अच्छे पुरुषार्थ करके तीव्र गति से आगे जाना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, प्योरिटी को भी बढ़ाना है, वो तीन अभ्यास सभी अभी से ही रोजाना करके चले। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अशरीरी बन जाओ निराकार। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। ये 3 अभ्यास रोजाना करके चलिए आप, फिर आपको अनुभव करेंगे वहां कि योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहजयोग का अनुभव करेंगे। और जब भी योग में बैठेंगे तो मन बुद्धि की एकाग्रता सहज हो जाएगी, क्योंकि जो कार्य आपने योग में करना है वो आपने कर्म करते हुए किया अभ्यास, तो फिर से वही करना पड़ेगा तो क्या होगा, सहज और सरल हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये 3 अभ्यास आप करके चलेंगे तो वहां हमारा योग पावरफुल हो जाएगा, और जहां योग पावरफुल है तो उससे ही विकर्मों का विनाश होगा और संस्कारों का परिवर्तन होगा, तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, और उससे हिसाब किताब चुकते होंगे पावरफुल योग से। दूसरा कि दूसरा तरीका है, अगर योग में बल नहीं है तो फिर दूसरा तरीका हिसाब किताब चुकतू करने का शारीरिक कर्म भोग, क्योंकि साधारण योग से तो हिसाब किताब चुकतू होते नहीं। कर्म भोग अर्थात बीमारी कोई भी आ जाती है किसी के सामने तो उससे भी हिसाब किताब चुकतू होंगे। लेकिन एक तीसरा भी तरीका है जो हमने प्रयोग किया खुद और से भी करवाया है, वो तीसरा तरीका यह है कि जो आत्मा आपको दुख दे रही है, विघन डाल रही है, तंग कर रही है, तो जरूर उसके साथ आपके कर्म का हिसाब किताब है। तो उसको चुकतु करने के लिए उस आत्मा को क्या करो कि सूक्ष्म लाइट के रूप में मर्ज कर उससे 7 दिन मनी मन माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। भाई मेरे द्वारा किसी भी जन्म में आपको दुख मिला हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना। ऐसे 7 दिन में कामृत पीले योग में अपनी बहू को मर्ज कर उससे क्षमा मांग लेना, माता जी को हमने बताया, और माता जी ने ऐसा किया, अपनी बहू को सूक्ष्म में इमर्ज के लाइट के रूप में उससे 7 दिन क्षमा मांगी मनी मन। भाई मेरे द्वारा किसी भी जन्म में आपको दुख मिला हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना। और 8वें या 9वें दिन माता जी की बहू माता जी के पास आती है और कहती है कि माता जी मैंने आज तक आपको बहुत तंग किया, दुख दिया, लेकिन आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे और सब कुछ ठीक हो गया। तो किनों के भी सामने कोई ऐसा हिसाब किताब हो तो उसका भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और योग के प्रयोग के लिए हम सदैव, एक तो जो मैंने बताया कि अपने सदैव सिरे स्वमान में रहें, और दूसरा बाबा को साथी बनाकर चलें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। कहीं भी जाओ आओ 2 मिनट बाबा को याद कर, कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो, ये कार्य कराओ। तो आप वो अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ देता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां अनेक असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। बाबा ने खुद कहा है, बच्चे कोई विघन परिस्थिति क्यों नहीं तुम्हारे सामने आए, यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे कि प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो वहां बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। याद है ना, बाबा के हैं। तो बाबा कहता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव कराता है, ऐसा ही एक अनुभव। अभी कुछ दिन पहले हम उड़ीसा गए थे कटक और भुवनेश्वर भट्टी कराने, तो वहां भुवनेश्वर से पुरी जा रहे थे हम, तो रास्ते में गांव पड़ा, 2 टीचर बहने, 1 माता, 2 भाई थे हम, तो जा रहे थे। जैसे गांव क्रॉस करने लगे तो दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, ऐसे गाड़ी से टकरा गया तो गिर गया। गाड़ी धीमी थी लेकिन फिर भी वो नशे में था इसलिए उसको पता नहीं चला, तो गिर गया तो उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। तो 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली और हंगामा करने लगे, ये है वो है, पैसे देकर जाओ। तो अभी गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, आप हम अपनी गलती मानते हैं, आप दुकान पे चलिए आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं नहीं हमारे को पैसे ही चाहिए और पैसे बहुत मांग रहे, अभी क्या करें। तो ऐसे उसको समझाते करते 20-25 मिनट निकल गए इस बात के पीछे, हमको ऐसे ही देरी हो रही और फिर भी कोई उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा। तो मैंने वहां से थोड़ा सा हट के अलग होकर और बाबा का आह्वान किया। मैंने कहा बाबा देखो अभी हम आपकी सेवा पर जा रहे हैं। बाबा को याद कर बुलाया और कहा कि देखो हम आपकी सेवा पर जा रहे हैं और ये लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे। अब आपको पता है इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो जो माता हमारे साथ थी, पहले से वो गाड़ी चला रही थी लेकिन थोड़ी दूर से पहले वो भाई चलाने लगा था, तो उसको अंदर से जैसे कि टचिंग आई और फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को पैसा भी नहीं दूंगी, जिसको चलना है पुलिस थाने चलो और जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पी और शराब पी के गाड़ी चला रहा है, इसलिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। अब शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो पुलिस में गए तो पहले उनको ही अंदर करेगी पुलिस। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो कहने लगे भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। ये है बाबा की कमाल। इसलिए हम कहीं आए जाएं कुछ भी करें उस सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर चलें, तो वहां कदम कदम पर से सफलता अनुभव होगी और असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। ऐसे अनुभव प्रयोग सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हम कोई न कोई छोटी मोटी समस्या कईयों के आगे होती है, ये हम भी ये प्रयोग करें, जरूर करो। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को आप ध्यान देकर चलेंगे तो सफलता मिलेगी, अपने जीवन की धारणा में लाके चलेंगे। पहली बात तो जो मैंने बताया कि हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए। अगर इससे कम का है तो आप परिस्थितियों की कभी सफलता असफलता दोनों हो सकती है। इस पर भी एक अनुभव मुझे याद आया है। एक माता मेरे पास आई है पांडवन के आंगन में बैठे होते हैं हम सिक्योरिटी की सेवा में, कहने लगी भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो मैं कहीं बाहर जा रहा था उस समय, तो मैंने माताजी को कहा माताजी मैं 5 दिन के लिए अभी जा रहा हूं कहीं बाहर, तो ऐसा करो तब तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, 5 दिन के बाद ऑपरेशन मिलना। मैं बाहर चला गया, माताजी योग करती रही 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते। 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई तो पूछा बोलो माताजी क्या समस्या है, तो माताजी कहती है भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्या कहां है क्यों है, जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। इसलिए एक तो योग का चार्ट 4 घंटे का होना चाहिए, दूसरी बात निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है, एक ही स्थान बैठकर एक ही समय रोजाना योग करें। तीसरी बात जैसी परिस्थिति जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं शक्ति की जरूरत है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, कहीं पवित्रता संबंध समस्या है तो मैं पवित्रता का अवतार हूं या परम पवित्र आत्मा हूं, कहीं अशांति है तो मैं शांति का अवतार हूं। जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात हमारे मन की शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है। तो इन 5 बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ सुना रहे थे अगली पॉइंट कि योग के प्रयोगों के लिए हम सदा ही अपनी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलें, क्योंकि वर्तमान समय और आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी और दूसरी तरफ विनाश की हलचल की प्रक्रिया शुरू होगी, तो किस समय हमको क्या करना है, उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सके, वो तभी हो सकेगा जबकि बाबा के साथ निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा रहेगा, लाइन क्लियर होगी। तो बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर कैसे रखें, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए दो बातों की, बातें तो बहुत है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं, दो बातों की आवश्यकता है। एक तो हम अपने सभी विस्तार को समेट कर सार स्वरूप बने, क्योंकि अब वापस घर जाने का समय आया है। अब ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, अपना जो जरूरी सामान है वो पैक करके रख लेते हैं, टाइम हुआ उठा के चल पड़े हैं। तो पहले से अगर समेटा हुआ होगा सब कुछ तो समय पर कोई सोचना नहीं पड़ेगा, पहले से तैयारी होगी तो है? तो वही स्थूल बातों की चीजों की, लेकिन यहां हम बात करें मन की, विचारों की। अगर बुद्धि में अनेक प्रकार की बातें होंगी, ये वो ये लेना है वो करना है, अधिक धन कमाना है या मान शान इच्छा जो भी है, अगर बुद्धि अनेक बातों में लगी हुई होगी और उसको एक बाबा में लगाना है तो उतना कमी आ जाएगी। इसलिए जरूरी है विस्तार, इसका मतलब ये नहीं कि हम विस्तार नहीं करें, करो भले, लेकिन उतना विस्तार करो कि वो विस्तार आपका बाबा से बुद्धियोग तोड़ने का कारण ना बने, कमी ना लाए। जब चाहो तब उसको समेट कर सेकंड में सार स्वरूप बन जाओ, बिंदु बन जाओ, नहीं तो विस्तार आपकी बुद्धि को बाबा से खींचेगा, अलग करेगा, तोड़ेगा है। दूसरी बात कि बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रहे, उसके लिए जरूरी है बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना। पवित्र तो हम सब बने हैं, लेकिन पवित्रता में संपूर्णता आ जाए उसमें हरेक नंबरवार है। पवित्र जब संपूर्णता होगी पवित्रता में, तो ही निरंतर बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी ना। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, उसके लिए बाबा ने अव्यक्त वाणियों में सात बातें बताई है। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता। स्वच्छता खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की स्वच्छता, सफाई हो तो उससे आपको बुद्धि रूपी पवित्रता को मेंटेन करने में, बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, अर्थात मन सा वाचा कर्म ना, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्माचारी कहा जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन जो उसके सूक्ष्म में बाल बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, उनको कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो कौन से हैं उनके बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, निंदा, चुगली, सब सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन, परचिंतन, जो भी नेगेटिव बातें हैं, माना उनमें से एक भी यदि हमारे अंदर है तो वो भी पवित्रता की लिस्ट में गिना जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आदत, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, उसको कहेंगे एक व्रता। और चौथा स्वरूप है संपूर्ण निर्विकारिता। निर्विकार तो बताया मैंने, नहीं, हाँ, संपूर्ण निर्विकारता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। और पांचवा स्वरूप है अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो। एक साकार मुरली में बाबा ने बात बताई कि अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी यह पवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो। और सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी यह पवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को हम अपने सामने रखकर देखें अपने आप को कि हमने कितना अपने आप को पवित्रता में संपूर्ण बनाया है। और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रहने लगेगी। और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो जाएंगे। कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें, नहीं, अगर लाइन क्लियर है तो जिस समय जो करना है वही टचिंग मिलेगी और वैसा करने में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। एक छोटा सा अनुभव इसके ऊपर, एक बार हम नेपाल गए भट्टे कराने के लिए, तो नेपाल, जैसे नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था नेपाल में, तो वहां भट्टी रखी थी। तो जैसे नेपाल पर बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उस दिन पता नहीं मिलिट्री वालों का कुछ आपस में झगड़ा हो गया था नेपाल इंडिया की मिलिट्री में, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को आने दे रहे थे ना जाने दे रहे थे। तो हम भी पहुंचे तो हमारे को बोला वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। एक वहां के भाई थे लोकल और एक हम थे। अब ये तो बड़ी समस्या आ गई, वहां भट्टी रखी 250-300 लोग इंतजार कर रहे हैं और ये कहते हैं वापस जाओ हम नहीं जाने देंगे, तो एक बड़ी समस्या हो गई ना। तो अभी क्या करें जी, तो वहां खड़े खड़े ही मैंने बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारा समाचार बताया कि बाबा देखो अभी हम आपकी सेवा पर आए हैं और यहाँ नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं, 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और ये मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि हमको बॉर्डर बंद किया हुआ है, अब वापस जाओ हम नहीं जाने देंगे। अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे मैंने सारा समाचार बाबा को बताकर कहा। ऐसे 2 मिनट बाबा को याद किया, 2 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे ये मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, आप उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है। तो एक और भाई थे वहां के हमारे साथ में, तो हम दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था, तो भाई ने जाकर हम दोनों गए तो भाई ने बोला उस ऑफिसर को साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू से आए हैं और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है हमारा और वहां इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। तो 2 मिनट के पहले ना हो गई, वो 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे? बाबा के साथ लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग ली और वैसा करने में सफल हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा मेरे को ही टचिंग देता है, नहीं, बाबा हर बात की हर बच्चे को टचिंग देता है, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ कितना क्लियर है उतना ही उस टचिंग को हम कैच कर सकेंगे, नहीं तो वहां प्रश्न उठेगा अभी क्या करें कैसे करें अगर लाइन क्लियर नहीं है तो। इसलिए वर्तमान समय भी आगे आने वाले समय को देखते हुए बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम हलचल की परिस्थितियों में उनके प्रभाव से मुक्त रहकर एक अचल अडोल स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और अब मैं ये बतलाता चाहता हूं आप सभी को कि कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम योग के प्रयोग कर चलें, किन किन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं आप। एक तो अपने पुराने स्वभाव संस्कारों पर भी आप योग का प्रयोग कर सकते हैं, उसके द्वारा अपने आप पुराने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन किया जा सकता है योग के प्रयोग के द्वारा। दूसरा कि प्रकृति के ऊपर भी योग का प्रयोग किया जा सकता है, परिस्थितियों को बदला जा सकता है, इतनी बड़ी शक्तियां हैं योग के प्रयोग। तीसरा, आप अपने शारीरिक बीमारियों पर भी योग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? प्रकृति के ऊपर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो मैंने पहले बात बताई ना, पांच बातें अपने जीवन की धारणा में लाओ फिर आप प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो प्रकृति के ऊपर कैसे हम योग का प्रयोग कर सकते हैं, एक बार हम जा रहे थे, आसाम जाना था यहां से दिल्ली, और दिल्ली से ट्रेन चेंज करके और आसाम जाना था भट्टी कराने के लिए। दिसंबर के महीने की बात है, तो दिसंबर जनवरी महीने में तो आप देखते होंगे दिल्ली और आसपास में बहुत धुंध कोहरा रहता है, और जिसके कारण बहुत ट्रेनें 10-15 घंटा लेट हो जाती हैं, कई ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती हैं, प्लेन भी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, तो स्पीड पकड़ नहीं पाते ट्रेनें या उड़ नहीं पाते प्लेन। तो ऐसा ही हम समाचारों में सुन रहे उस समय कि भाई बहुत बहुत ट्रेन 8-10 घंटा लेट चल रही है, कई ट्रेनें कैंसिल भी हो गई हैं। तो अगर मैंने कहा हमारी यहाँ की ट्रेन लेट हो गई तो वहां की ट्रेन निकल जाएगी, सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा, तो मैंने कहा एक प्रयोग करना चाहिए। तो हमने यहाँ बगीचे में खड़े होकर 8 दिसंबर को निकलना था हमको दिल्ली के लिए, 9 दिसंबर को दिल्ली से आसाम की ट्रेन चेंज करके जाना था। तो मैंने 7 और 8 तारीख को 2 दिन बगीचे में खड़े होकर प्रकृति से बात की, प्रयोग किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूं कि हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली और आसपास में 9 दिसंबर और 23 दिसंबर को मौसम ठीक रखने में आपके सहयोग की कामना करते हैं। ऐसे कर 2-3 मिनट बगीचे में खड़े खड़े देवताई रूप में इमर्ज कर और बात की। 8 तारीख को भी दिन में बात की, रात को हमको निकलना था 8 तारीख को, ऐसे 2 बार ये प्रयोग किया। 8 तारीख रात को हम आबू रोड से ट्रेन में बैठे और 9 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचे। एक भाई स्टेशन पर हमें लेने के लिए आया तो कहने लगा, भाई साहब देखो यहाँ कल तक बहुत धुंध कोहरा था, आज ही मौसम क्लियर हुआ है। ऐसे ही फिर हम मौसम क्लियर था तो ट्रेन राइट टाइम आई, वहां से राइट टाइम चल पड़े दिल्ली से आसाम पहुंचे। तो वहां 2-3 जगह भट्टी थी और 8-10 सेंटरों पर क्लास कराते। लास्ट हमारी भट्टी थी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, 1 दिन की वो भट्टी करा के पूरी, और वहां से हमको दूसरे दिन सुबह 6 बजे निकलना था, और 6 बजे जोर की बरसात शुरू हो गई, फुल फोर्स से बरसात। गाड़ी थोड़ा सेंटर से दूर खड़ी थी, अब फुल बरसात में ऐसे भी जाओ छाता लेकर तो नीचे से आधा ऐसे भीग जाएगा व्यक्ति। तो अभी क्या करना चाहिए? तो फिर मेरे विचार आया कि हम प्रयोग करें फिर प्रकृति को ऊपर। तो वही हमने प्रयोग किया, कमरे से बाहर निकल के बरामदे में खड़े होकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दे रहा हूँ, हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी 10 मिनट के लिए बरसात बंद करने में आपके सहयोग की कामना करते हैं। ऐसे मैंने 2 मिनट खड़े खड़े बात की और उसके बाद ऐसे घूम के मैं कमरे में आया, एक ही मिनट हुआ होगा, एक मिनट के बाद मैं देखता हूँ कि बरसात धीमी हो गई है और 3 मिनट के अंदर तो कंप्लीट बरसात बंद भी हो गई। तो इस प्रकार से हम प्रकृति के ऊपर भी और अपने शारीरिक कर्म भोग के ऊपर भी योग का प्रयोग कर विजयी बन सकते हैं। एक छोटा सा अनुभव ऐसे, लेकिन वो 5 बातें हों तो सहज उसमें सफलता मिलेगी। एक टीचर बहन यहाँ सेंटर पर भट्टी करने के लिए आई थी, बहनों की भट्टी होती रहती है ना, टीचर्स बहनों की, कुमारों की, कभी माताओं की, ऐसे पिछले समय की बात है। तो उसके कान के पर्दे में छेद था, तो वहां भी दिखाया अपने सेंटर पर भी और यहाँ भी आई, तो डॉक्टर ने यही बोला कि माता जी सॉरी बहन जी, ये छेद है, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, दवाई गोली से ठीक होने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ जब आई ग्लोबल हॉस्पिटल में भी दिखाया, तो यहाँ भी चेक कर यही बताया डॉक्टर ने, बहन जी इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है भट्टी शुरू होने से पहले। तो सोचा कल से भट्टी है तो चलो बाद में देखेंगे, पहले भट्टी करके आते हैं नीचे। तो नीचे भट्टी करने गई तो उसने भट्टी में प्रयोग किया, जब भी योग करती, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस कान के ऊपर डाल रही हूं और बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, आपने इसको ठीक करना है। ऐसे वो घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटा जैसे योग होता सुबह शाम, वैसे योग में यह प्रयोग करती। ऐसे लगभग 6 दिन भट्टी चली, उसने 6 दिन सुबह शाम जब भी योग होता यह प्रयोग करती। 6 दिन भट्टी पूरा होने के बाद वो फिर ऊपर आई, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल गई तो चेक कराया, ऑपरेशन कराने के लिए आई थी वो। तो डॉक्टर ने सोचा फिर से चेक कर लेता हूँ, भी ऑपरेशन करना है तो क्या पोजीशन है उसी हिसाब से करेंगे। तो डॉक्टर चेक करके बताता है कि बहन जी आपको तो कोई छेद वेद कुछ भी नहीं है, मैं किसका ऑपरेशन करूं, एकदम क्लियर। तो वो बड़ी शक्ति है योग में, जो इसके द्वारा आप अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को भी परिवर्तन किया जा सकता है योग के प्रयोग द्वारा। जो भी कोई संस्कार आपके अंदर ऐसा है जो आपके पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन रहा है, आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, क्रोध का या फीलिंग का या और कोई भी नेगेटिव सोचने का, पर चिंतन का, जो भी है, आप उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अमृत वेले आंख खुलते ही मैं मास्टर, पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, दूसरा संकल्प ही करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा मुझे इस संस्कार को परिवर्तन करना है। 9 बार ये संकल्प कर लीजिए उठते ही रोजाना 21 दिन तक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा मुझे इस संस्कार को परिवर्तन करना है, इस कमी कमजोरी को खत्म करना है, इस गुण विशेषता को धारण करना है। ऐसे आप 21 दिन प्रयोग करिए, आपका वो संस्कार धीरे धीरे, 1-2-4 दिन की बात नहीं कहता मैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाएगा। क्यों? उसके पीछे राज है, कारण है कि सुबह हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है, जो मैंने पहले बताई ये बात। तो जो भी विचार देंगे मन को, उन्हें वो सहजी स्वीकार कर लेगा, और जब मन ने कोई बात स्वीकार कर ली है तो फिर वैसा बनना करना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा, वो काम करेगा उस दिशा में अपने आप। तो ऐसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, कारोबार में बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, आप उसके लिए ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसे भाई ने के सामने ऐसी समस्या आई, उसका एक फोन आया, भाई जी मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई है, मैं 5 साल से मैंने बहुत बिजनेस चेंज करके देख लिए, सब में घाटा घाटा ही होता जा रहा है, मैं क्या करूं, और मेरा दिल करता है मैं आत्महत्या कर लूं, बहुत टेंशन हो गया मेरे को। मैंने कहा ऐसा करने से कोई आपका फायदा नहीं हो जाएगा बिजनेस में, ऐसा काम भूलकर भी नहीं करना, आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उठते ही 9 बार ये संकल्प करो 21 दिन तक और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने करना शुरू किया, पहले दिन किया तो कुछ पता नहीं चला, दूसरे दिन किया थोड़ा फायदा, तीसरे दिन किया और फायदा, चौथे दिन किया और फायदा, पांचवे दिन किया और फायदा, ऐसे 21 दिन तो पूरे हो गए। और उसने सोचा कि इसमें तो बात में कुछ दम है, रिजल्ट मिल रहा है, तो क्यों नहीं ज्यादा समय कर लूं ये अभ्यास। लेकिन निश्चय बुद्धि बनकर बाबा की लगन के साथ, तो ऐसे उसने 3 महीने तक ये प्रयोग किया और 3 महीने में उसको 70% प्रोग्रेस हुई। जो बिल्कुल बिजनेस घाटे में जा रहा था वो 70% प्रोग्रेस हुई। तो इस तरह से आप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में योग के प्रयोग कर सदा ही आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें, एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें, तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति। अभी एक लास्ट पॉइंट, क्लास पूरा करने के बाद मैं सुना रहा हूँ, बात छोटी सी है लेकिन कईयों के सामने ये भी एक बड़ा विघ्न आता है। जैसे ही मैं यहाँ क्लास कराने के लिए बैठा था तो मैं सामने देख रहा लगभग 5-7 आत्माएं निद्रा देवी की गोद में थी। चाहता कोई नहीं क्लास में योग में नींद आए, लेकिन नींद आ जाती है। तो ये भी तो एक विघ्न है ना, योग में पुरुषार्थ में है। तो नींद से मुक्त होने के लिए, सुस्ती से मुक्त होने के लिए है 5-7 बातें हैं, उनका यदि हम प्रयोग करके चलेंगे तो आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। एक तो देखो, हम शरीर को जितना रेस्ट चाहिए उतना हम रेस्ट लें। अगर आप नहीं लेंगे तो जहां भी आप बैठेंगे शांति से आराम से नींद आ जाएगी आपके बिना पूछे ही। मना दिन में 1-1.5 घंटा रेस्ट जरूर कर लें, रात को टाइम पर सोएं, हल्का भोजन हो, देरी से भोजन ना करें। भोजन करने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि भोजन पूरी तरह हजम होगा तो अमृत वेला आप अच्छा योग कर सकेंगे। इसके अलावा अधिक नींद आने का कारण कईयों का ये भी होता है कि जिनका ब्लड प्रेशर धीमी गति का है, लो ब्लड प्रेशर है, उसके कारण भी ज्यादा नींद आती है, तो उसका इलाज कराएं। और इसके अलावा जिनका पेट साफ नहीं रहता है, उसके कारण भी सुस्ती रहती है तो नींद ज्यादा आएगी, तो इसलिए पेट क्लीन रखें। इसके बाद अधिक नींद आने का कारण ये सब कुछ करने के बाद भी नींद अधिक आए, तो फिर आप इन 5 बातों का प्रयोग करके देखना। जब हम 5-6 घंटे नींद करके सुबह उठते हैं तो 5-6 घंटे तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। योग में वैसे खोल के बैठना चाहते हैं, आंखों को आदत पड़ी है बंद रहने की, तो ऐसे खुलती तो हैं योग करते 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 करते, कब फिर झुटका आ जाता है। कईयों को पता ही नहीं चलता योग कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं। कोई पीछे वाला हाथ लगाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं हम यहीं थे योग कर रहे थे। भाई क्या अनुभव किया? कहते बहुत शांति मिली है, क्योंकि नींद से शरीर और आत्मा दोनों को रेस्ट मिलता है तो शांति मिलेगी ना। है तो क्या करो, सुबह जब हम उठते हैं तो हाथ मुंह धुलाई करते हैं तो उस समय मुंह में पानी भर लो और इस तरह से मुंह की एक्सरसाइज करो, ऐसे 8-10 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी पलकों की नसों का कनेक्शन मुंह के साथ है। जब मुंह में पानी भर के इस तरह से मुंह की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पलकों की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नसें यहां आकर सुकड़ गई हैं तो एक्सरसाइज से धीरे 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 खुलकर वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएंगी, तो फिर से जल्दी से आंखें बंद नहीं होंगी। एक बात। दूसरी बात, जब हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारा ब्रेन माइंड सुस्ती आलस के प्रभाव में होता है ज्यादा, क्योंकि 5-6 घंटे नींद किए, भले आपने ब्रश कर लिया, कोई चाय पानी पी लेते, कोई हाथ मुंह धुलाई कर लेते, तो इससे काफी सुस्ती कम तो होती है, लेकिन फिर भी माइंड पर सुस्ती का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो क्या करो कि जैसे हमारे हाथ और पैरों में शरीर के सभी अंगों का एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, वो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर पॉइंट दबा के अनेक रोगों का इलाज करते हैं, ऐसे हमारे कान के अंदर भी शरीर के सभी अंगों का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और विशेषकर कान में नीचे के भाग में जहां माताएं कुछ पहनती हैं नींद का पॉइंट है। ये पॉइंट आप, ये भी और दूसरे सारे पॉइंट एक बार अच्छी तरह से दबा लो। अभी भी किसी को सुस्ती आ रही हो दबा के देख सकते हैं, तुरंत उसका इफेक्ट होगा है, क्योंकि ये पॉइंट माइंड के नजदीक है ना, तो पॉइंट दबाते ही तुरंत माइंड पर उसका इफेक्ट होगा, और जो हमारा ब्रेन सुस्ती आलस के प्रभाव में एकदम उसमें चुस्ती आ जाएगी, अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। फिर कोई अच्छे समान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। तीसरी बात, तीसरी या चौथी, तीसरी ना, हाँ, तीसरी बात, माइंड को और एक्टिव अलर्ट बनाने के लिए हमारे माइंड की सभी नसें गर्दन के द्वारा शरीर से जुड़ी हुई है, तो योग में जाने से पहले थोड़ा सा गर्दन किस तरह से एक्सरसाइज कर लें, 3-4 बारियों और 3-4 बारियों, लेकिन करना धीरे धीरे, कहीं झटके से गर्दन घुमा दी, कोई नस वगैरह खिंच गई तो कहेंगे भाई जी ने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, ऐसा ना हो, आराम आराम से करें। तो इससे क्या होगा, जब हम गर्दन की नसों की एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नसें नींद के कारण शांत सुन्न पड़ गई उनमें एक्टिवनेस अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। फिर कोई अच्छे समान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। चौथी बात, हम इस तरह से कान की एक्सरसाइज कर लें, 3-4 बारियों, 3-4 बारियों और 3-4 बारियों, तो इससे भी नसों में चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। पांचवी बात, जिनको ये पता है कि मुझे क्लास में योग में सुस्ती आती है, नींद आती है, तो अपने साथ रुमाल जरूर रख के बैठे। कोई अचानक नींद नहीं आ जाती क्लास में योग में, सुस्ती आने से पहले थोड़ा सा ऐसे नशा सा चढ़ेगा है, आपको लगेगा कभी नींद का नशा चढ़ने लगा है, तो उठाया रुमाल, हल्के हाथ से एक आंख पर घुमा लिया, दूसरी आंख पर घुमा लिया, पूरे चेहरे पर घुमा लिया, आधा मिनट में एकदम फ्रेश, सुस्ती खत्म। इस तरह से आप इन सभी बातों का प्रयोग कर चलो तो निद्रा देवी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और आप अपना कान इस तरह रोजाना पकड़ते रहेंगे तो माया आपका कान कभी नहीं पकड़ेगी। ओम शांति। चलो अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। कभी भी योग करें तो कोई न कोई समान का अभ्यास करते हुए योग करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की छत्र छाया के नीचे विराजमान हूँ, और सर्वशक्तिवान से सर्वशक्तियां लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं।